ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम अश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 5 श्लोक संख्या 48।
नावमह कर्म कल्पोपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैव सहि आत्मा दयितो हिता। नावमह कर्म कल्पोपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैव सहि आत्मा दयितो हिता। नावमह कर्म कल्पोपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैव सहि आत्मा दयितो हितः।
माताजी, शब्दार्थ न नहीं, अवमह अल्प नगण्य, कर्म कर्म, कल्प ढंग से संपन्न किया गया, अपि भी विफलयाय व्यर्थ जाते हैं, ईश्वर अर्पितः भगवान को समर्पित होने के कारण, कल्पते ऐसा मान लिया जाता है, पुरुषस्य सारे पुरुषों का, एव निह संदेह, सह भगवान ही निश्चय ही आत्मा परमात्मा परमपिता दैतः अत्यंत प्रिय पितः लाभप्रद। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समर्पित कार्य भले ही छोटे पैमाने पर क्यों न किए जाएं, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। अतएव स्वाभाविक है कि परम पिता होने के कारण स्वाभाविक रूप से भगवान अत्यंत प्रिय हैं और वे जीवों के कल्याण के लिए सदैव कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। तात्पर्य भगवद गीता 2.40 में भगवान कहते हैं, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यह धर्म या भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि यह अल्प भगवान नगण्य मात्रा में भी की जाए, लगभग नगण्य मात्रा में भी की जाए, तो भी श्रेष्ठ परिणाम मिल सकता है। विश्व इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें भगवान की थोड़ी सी सेवा करने से भी जीव महानतम संकट से बचा है। उदाहरणार्थ भगवान ने अजामिल को नरक जाने के महानतम संकट से बचा लिया। वह इसलिए बचाया जा सका क्योंकि अपने जीवन के अंत में उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। अजामिल ने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण जानबूझकर नहीं किया था, वास्तव में वह अपने सबसे छोटे पुत्र को बुला रहा था जिसका नाम नारायण था। फिर भी भगवान नारायण के इस उच्चारण जप को गंभीरता से लिया और इस तरह अजामिल को अंत्य नारायण स्मृति, अंतकाल में नारायण का स्मरण करने का फल मिला। यदि कोई किसी भी तरह नारायण कृष्ण या राम के पवित्र नाम का स्मरण जीवन के अंत समय करता है तो वह तुरंत ही भगवत धाम को जाने का दिव्य फल प्राप्त करता है। वास्तव में भगवान हमारे प्रेम के एकमात्र लक्ष्य हैं। जब तक हम इस जगत में रहते हैं हमें अनेक इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, किंतु ज्यों ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं त्यों ही हम पूर्ण तथा पूरी तरह तुष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार छोटा बालक अपनी माता की गोद में पहुंचते ही संतुष्ट हो जाता है। ध्रुव महाराज तपस्या द्वारा कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जंगल गए थे, किंतु जब उन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने कहा, मैं कोई भौतिक वरदान नहीं चाहता, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। यदि कोई भगवान की सेवा करके कोई लाभ चाहता भी है तो यह लाभ अत्यंत आसानी से बिना कठोर श्रम के ही प्राप्त किया जा सकता है। अतएव शास्त्र की संस्तुति है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषम परम। कोई मनुष्य हर वस्तु को चाहे या कुछ भी हो न चाहे कोई मनुष्य हर वस्तु को चाहे या कुछ भी न चाहे या भगवान के अस्तित्व में तल्लीन होने की इच्छा करे, किंतु वह तभी बुद्धिमान है यदि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति संपन्न करके भगवान कृष्ण की पूजा करता है। यदि भौतिक इच्छाएं रहे भी तो मनुष्य निसंदेह भगवान की सेवा करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। ओम ज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो प्रस्तुत प्रसंग में हम पिछले कई दिनों से देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है। जैसे कि हम पीछे के प्रसंगों में सुन चुके हैं कि किस प्रकार बृहस्पति का अपमान करने के कारण जो देवताओं के गुरु हैं इंद्र समेत सभी देवताओं को बहुत ही संकट का सामना करना पड़ा, वो पराजित हो गए और इस संकट से निवृत्ति के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीरोदशायी विष्णु के पास जाते हैं, भगवान वहां प्रकट होते हैं और इसके बाद देवता लोग भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं, रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो श्लोक है इसमें मुख्य रूप से देवता लोग भगवान के भक्ति की महिमा बता रहे हैं। ऐसे तो गीता में भगवान ने कई श्लोकों में अपने भक्ति की महिमा बताई है। बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें भक्ति की महिमा का वर्णन भगवान ने स्वयं अपने मुख से किया है। जैसे मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम है वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियो अशी में मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं सत्य रूप से कहता हूं कि तुम मेरे पास आ जाओगे। मेरे पास आ जाओगे अर्थात तुमको बहुत ही दुखों छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये जगत दुखालयम शाश्वतम है। और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है 18वां अध्याय का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सभी धर्मों का परित्याग कर दो। प्रश्न उठता है सभी धर्मों का परित्याग करेंगे तो पाप लगेगा, क्योंकि बहुत सारे धर्म का निर्वाह करना होता है मनुष्य मिलने के बाद। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, डरो मत, यदि पाप लगा भी तो मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, सिर्फ एकमात्र मेरी शरणागति स्वीकार कर लो, मेरे भक्त बन जाओ। ये भक्ति की महिमा है। इस प्रकार बहुत सारे श्लोकों में भगवान अपने भक्ति की महिमा बता रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी भी भगवत गीता का एक श्लोक यहां पर कोट करते हैं शुरुआत में तात्पर्य में, और ये भी भगवान की भक्ति की महिमा बताने वाला श्लोक है। कौन सा श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं? स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो एक आध्यात्मिक कार्य होता है, एक भौतिक कार्य होता है। यदि हम भौतिक संसार में कोई भौतिक कार्य संपन्न करते हैं या शुरुआत करते हैं तो एक निश्चित सीमा तक जाकर उसको पूरा करना होता है। यदि हम कोई भौतिक कार्य शुरुआत करते हैं और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले यदि उसको खत्म लक्ष्य तक पहुंचकर खत्म नहीं करते हैं तो उसका उतना वास्तविक फल नहीं आता है। जैसे मान लीजिए हम एक मकान बना रहे हैं और हमने पिलर खड़ा कर दिया, दीवार खड़ा कर दिया और ऊपर से छत नहीं डाला, ऐसा खत्म हो गया तो उस घर का कोई काम है न? बारिश से रक्षा हो सकती है, न धूप से रक्षा हो सकती है, न ठंडी से रक्षा हो सकती है। अर्थात कार्य संपन्न शुरू किया तो उसको संपन्न करना जरूरी है। बहुत पढ़ाई लिखाई किया, डिग्री लिया, एमएचडी किया, पीएचडी किया, सब कुछ किया और उसके अनुरूप यदि आपको जॉब नहीं मिला, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, आपको नहीं लिया तो कुछ फायदा हुआ? इतना मेहनत किया, इतना पैसा खर्चा किया, लेकिन उसके अनुरूप यदि हमको भौतिक जगत में सफलता नहीं मिलती है तो जीवन व्यर्थ माना जाता है। या कभी कभी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और हमको सुसाइड करना पड़ता है, मर जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उसके अनुरूप उसको काम नहीं मिला। बहुत पैसा कौड़ी लगाकर हमने बिजनेस चालू किया, दुकान खोला, फैक्ट्री डाली और घाटा लग गया, फायदा नहीं हुआ, लक्ष्य था कमाना, बड़ा आदमी बनना, लेकिन नहीं बन पाए तो क्या होता है? सब खत्म। तो भौतिक जगत में कोई भी कार्य हम शुरुआत करते हैं तो हमको एक निश्चित अवधि में पूरा करके उसको संपन्न करना होता है और उसका लाभ मिलना चाहिए। ये प्रायः इसी लक्ष्य को लेकर संसार में लोग काम करते हैं, भौतिक जगत में लोग अहर्निश कठिन श्रम करते हैं इसी के लिए। तो हो गया भौतिक कार्य शुरू करना है, एक अंतिम लक्ष्य तक जाकर उसको पूरा करना है। यदि हम नहीं कर पाए तो कोई लाभ नहीं हुआ, जीरो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में यहां बता रहे हैं स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हम भक्ति जीवन में आते हैं, भक्ति प्रारंभ करते हैं, गुरु की शरणागति स्वीकार करते हैं, गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, हरिनाम जप करते हैं, हरिनाम करते हैं, भगवान का वर्शिप करते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं और लक्ष्य क्या है? हम यहाँ अभ्यास करेंगे और भगवत धाम में जाएंगे इस संसार को छोड़कर। उद्देश्य भगवत धाम में जाना, भगवान की शरणागति स्वीकार करना, गोलोक वृंदावन धाम में जाना। लेकिन उतना आसान नहीं है, नहीं जा पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे। तो हमने भौतिक जगत छोड़ा, भौतिक संसार छोड़ा, सभी संबंधों को छोड़ा, भगवान के भक्त बन गए और लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, भगवान के धाम में जाना। लेकिन हम नहीं पहुंच पाए, प्रयास किया नहीं पहुंच पाया, प्रयास किया बीच में माया ने पकड़ लिया, पतित हो गए, गिर गए, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, तो सब कुछ व्यर्थ हो गया? बोलते नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि भक्ति में वो नियम लागू नहीं होता है। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि किसी भक्त ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की थोड़ी भी निमित्त सेवा की है, थोड़ा सा भी भगवान के लिए कर्म करना है, तो भगवान आश्वासन देते हैं, भगवान अपने मुख से कहते हैं कि मैं उसकी महान भय से रक्षा करूंगा। और सबसे महान भय क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि भव सागर का चक्कर। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको बचा लूंगा। यदि तुम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया तो भी तुम्हारा प्रयास विफल नहीं है, वो आपका फिक्स बैलेंस है, उसमें कोई घाटा नहीं है। और प्रभुपाद जी इसकी पूर्ति के लिए, इस श्लोक की पूर्ति के लिए उदाहरण देते हैं अजामिल का। शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण हैं, लोगों ने भक्ति किया लेकिन बीच में रुक गए, बीच में नहीं हो पाया लक्ष्य में, लेकिन भगवान ने कुछ न कुछ योजना बनाई उनकी पूर्ति के लिए। तो अजामिल का प्रसंग देते हैं प्रभुपाद जी कि किस प्रकार अजामिल प्रारंभ में शालिग्राम की शिला की पूजा करता था अपने पिताजी के संरक्षण में रहकर, और अपने पिताजी के संरक्षण में रहते हुए पिताजी की आज्ञा से वो जंगल गया शालिग्राम के लिए फूल लाने के लिए, और दुर्भाग्यवश वहां माया के बंधन में आ गया, माया की पकड़ में आ गया और अजामिल पतित हो गया। अजामिल गिर गया लेकिन फिर भी चूंकि उसने भगवान का भजन किया था, भगवान की भक्ति की थी, शालिग्राम का सेवा किया था, तो भौतिक जगत के स्वभाव के कारण श्री श्री राधा बिहारी श्री श्री सीताराम लक्ष्मण सिंह नेताई भगवान की, तो संसार का जो ये स्वभाव है मम माया दुरत्यय, संसार में विषयों का भोगों का बहुत बड़ा आकर्षण है, सामान्यतः सभी जीवों की बस की बात नहीं होती है कि लड़ पाए, और कभी कभी हम मार्ग से विचलित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कुछ न कुछ योजना बनाते हैं। जिसने जीवन में एक बार भी भगवान का शरणागति स्वीकार किया है तो भगवान उसको नहीं छोड़ते हैं, ये भगवान का आश्वासन। भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये अजामिल का प्रसंग प्रभुपाद जी बताते हैं। अभी हम कुछ ही समय पहले हम लोग श्रवण कर रहे थे गजेंद्र उपाख्यान, जिनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया गजेंद्र को, और हम पूर्व जीवन का वृत्तांत पढ़ते हैं कि जो गजेंद्र थे ये पिछले जन्म में इंद्रदुम्न नाम के राजा थे और बहुत ही धार्मिक राजा थे, भगवान की भक्ति किया करते थे, भगवान का पूजा पाठ किया करते थे। और उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया, बहुत लंबा संघर्ष चला। तो एक चीज यहां सीखने वाली बात है कि जिस भक्त ने जीवन में एक बार भगवान का शरणागति स्वीकार किया है, भगवान को प्रणाम किया है, भगवान का नाम जप किया है, भगवान के लिए नाचा है, भगवान के लिए गाया है, कई प्रकार की भक्ति अनौधा भक्ति है, और अनौधा भक्ति में किसी भी विधि का पालन करके भगवान की सेवा की है, तो भगवान उसको विस्मरण नहीं करते हैं, भगवान उसको बहुत महत्व देते हैं, और भगवान उस भक्त को, चूंकि भगवान का विस्मरण कर चुका है लेकिन फिर भी अपना स्मरण दिलाने के लिए भगवान कोई न कोई युक्ति कोई न कोई योजना बनाते हैं। जब गजेंद्रोपाख्यान चालू हो रहा है, भगवान गजेंद्र लड़ते लड़ते हार चुका है, अभी उसकी शक्ति पूरी छीड़ हो चुकी है, मगरमच्छ भारी पड़ गया है गजेंद्र के ऊपर, क्योंकि वो पानी का जीव है, गजेंद्र के अंदर शक्ति नहीं रह गई है, अपना पूरा प्रयास किया लेकिन वो हार गया। अचानक डूबने ही वाला था वो, अंतिम क्षण था जीवन का, तो यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि जजापम परमम जाप्यम प्राग जन्मन में अनुशिक्षितम। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदि कि जब एकदम जीवन का अंत समय आ गया तो गजेंद्र ने क्या किया, गजेंद्र ने अपने मन और पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थित कर लिया, अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया, और उस मंत्र का जब प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रदुम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था। उसने भक्ति की थी और भक्ति करते समय भगवान की बहुत सारी स्तुति होते हैं, श्लोक होते हैं भगवान के सौंदर्य के, भगवान की भक्ति के, भगवान की करुणा के, बहुत सारे प्रकार के श्लोक होते हैं, स्तुति होती है। और उसने श्लोक और स्तुतियों का पाठ किया था। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज तात्पर्य में लिखते हैं कि इससे चूंकि गजेंद्र ने एक स्तुति का पाठ किया जो उसको याद आ गया अचानक, तो जो जीवन के अंत क्षण में उस स्थिति में गजेंद्र को याद आया, इतने लंबे वर्षों तक युद्ध चल रहा है कुछ भी याद नहीं आया, लेकिन एकदम जीवन के भयावह अवस्था में पहुंच गया, एकदम खत्म ही होने वाला है उसका भौतिक अस्तित्व, और भगवान ने उसको स्मरण दिला दिया। भगवान बोलते हैं कि स्मरण विस्मरण सब मेरे द्वारा होता है, तो उस जीवन के अंतिम क्षण में जो भगवान का स्मरण कर पाया वो अपने प्रयास से नहीं, भगवान की कृपा से भगवान ने उसको स्मरण दिला दिया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान का भक्ति किया था। तो प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि इस प्रकार यहां यह अनिवार्य हो जाता है कि कृष्ण भावना भावित के सारे भक्त किसी मंत्र का जप करने का अभ्यास करें, श्लोक रटना चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं ठीक है रटना पढ़ना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कम से कम तीन श्लोक तो सबको रटना चाहिए, तीन मंत्र सबको याद होना चाहिए। हर जिसने भी कृष्ण भावना भावित स्वीकार किया है, इस्कान ज्वाइन किया है, एक तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तीन मंत्र रटना चाहिए क्योंकि ये किसी भी समय काम आ सकते हैं। तो पहला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र सबको याद होना चाहिए। दूसरा प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चिंतामणि प्रकट रस कल्पवृक्ष लक्षावृषेतु सुरभीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सत्र सुभिमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्यों? क्योंकि ये भगवान के गोलोक वृंदावन धाम का महिमा बखान करता है। हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, भौतिक जगत का क्या स्वरूप है? दुखालयम अशाश्वतम, सब क्षणिक वस्तुएं हैं। यहाँ का जो सौंदर्य है, यहाँ का जो आकर्षण है जिसमें हमारा चित्त हमारा मन भ्रमित करता है, वो सब कैसे हैं? वो पानी के बुलबुले की भांति हैं, दिखने में सुंदर, सब भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक भगवान का धाम है, यदि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का असर स्वीकार किए हैं, तो लक्ष्य है कि हमको इस घर पे जाना है। कौन सा घर? जो इस प्रकार का बना हुआ है, चिंता मणि प्रकट सद मसुकल्प वृक्ष लच्छा वृतेश सुर भीर विपालयंतम लक्ष्मी सहस्र संभ्रव से विमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामी। तो ये गोलोक वृंदावन का ऐश्वर्य का वर्णन है, ये हमको याद दिलाने के लिए कि हमको इस घर पे जाना है, हमको वहां पर जाना है, याद करना चाहिए। और तीसरा प्राय सभी भक्तों के याद रहता है क्योंकि पदम पदम यद विपताम ही तेषाम, ये भौतिक जगत संकटों से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है, और भक्तों के जीवन में जब कभी भी कष्ट और संकट आता है तो किसको स्मरण करते हैं, किसको याद करते हैं? नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादायनेकशिला टंकन खाल है, तो नरसिंह प्रेयर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार के जाप का अभ्यास भक्तों को करना चाहिए क्योंकि ये जीवन के किसी भी क्षण काम आ सकते हैं, भगवान इसका स्मरण करा सकते हैं। प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र के पूर्ण रूपेण जप का अभ्यास करना चाहिए जिससे भले ही वह जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना न प्राप्त कर सके किंतु अगले जीवन में वह पशु होने पर भी कृष्ण भावना भेद को भूल न सके। अभ्यास करना चाहिए भक्ति का। हाँ? जिस प्रकार पशु के शरीर में है गजेंद्र लेकिन एक स्तुति का स्मरण हो गया, याद हो गया, अर्थात भगवान अपनी अहैतिक कृपा से स्मरण करा सकते हैं, वो शक्ति दे सकते हैं कि पशु योनि में रह के भी जीव उस चीज को याद कर सके। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है इसमें जट भरत जी का भी। जट भरत जो कि संपूर्ण अपने ऐश्वर्य का राजा राज का ऐश्वर्य त्याग कर गंडकी नदी किनारे तपस्या कर रहे थे, लेकिन अचानक एक मृग में उनकी आसक्ति हो गई। तो मम माया दूरत्या, भगवान की माया बहुत विचित्र है। हम जट भरत के प्रसंग में देख सकते हैं कि ममता हाँ दया करुणा, ममता दया करुणा के रूप में भी माया पकड़ सकती है। हाँ। वास्तव में करुणा दिखाना कोई गलत नहीं है, दया दिखाना कोई गलत नहीं है, लेकिन माया भौतिक जगत का इतना सूक्ष्म नियम है कि करुणा दया और ममता के रूप में भी माया आ सकती है। और इसी करुणा के वशीभूत भरत जी फंस गए और उनको फिर अगले जीवन में मृग बनना पड़ा। लेकिन चूंकि उन्होंने बहुत कठिन अभ्यास किया था, हाँ, मृग में आसक्ति से पूर्ण बहुत ही कठिन साधना किया था, भक्ति किया था, संपूर्ण राज ऐश्वर्य छोड़कर व्रत का जीवन जिया था उन्होंने, चूंकि भगवान का इतने अच्छे से भजन किया था, इसलिए हिरण का शरीर मिलने के बावजूद भी भगवान ने उनकी चेतना का विस्मरण नहीं कराया। ये सब भगवान की कृपा से ही संभव है, ये ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। हर के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग भगवान का दृष्टिकोण हो सकता है, उसको शुद्ध करने का, उसको पवित्र करने का, उसको बचाने का। हाँ, जैसे भगवान कठिनाई दे सकते हैं, भगवान दुख दे सकते हैं, इवन भगवान यमराज का भी दर्शन कराकर स्मरण दिला सकते हैं, अजामिल के प्रसंग दे सकते हैं कि भय में स्मरण करा दिया, भगवान ने इतना दुख दिया। गजेंद्र कितना दुख में था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा था, इतना तकलीफ में था, इतना पीड़ा में था, तो भगवान कष्ट दे सकते हैं, कष्ट देकर भी स्मरण करा सकते हैं। भगवान का जो दया करने का गुण है या टेक्निक है वो हर भक्त के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन भगवान का जो ये आश्वासन है कि नमे भक्त या परस्थिति मेरे भक्त का नाश नहीं होता है, उसकी पूर्ति के लिए भगवान कुछ भी योजना बना सकते हैं, कुछ भी योजना बना सकते हैं। वो कष्ट दे सकते हैं, जीवन में कुछ ऐसी विषम स्थिति ला सकते हैं कि भक्त टूट सकता है और अंतोगत्वा भगवान की शरणागति में आ सकता है। भगवान की बहुत सारी योजना हो सकती है, कठिनाई दे सकते हैं, शारीरिक कष्ट दे सकते हैं, दुख दे सकते हैं, लेकिन हमको ये समझने में तत्पर रहना चाहिए, भक्त को समझने में तत्पर रहना चाहिए शरणागति भाव से कि भगवान की अहित की कृपा है। इस प्रकार भगवान पर से भक्त कभी विश्वास को तोड़ता नहीं है, कभी नहीं तोड़ता है। तो इस प्रकार जट भरत जी का प्रश्न बता रहा था, मैं तो हिरण के शरीर में आ गए, लेकिन हिरण के शरीर में आने के बावजूद भी उनकी चेतना वैसी दिव्य बनी रही। ऐसा नहीं कि हिरण के घर में जन्म लिया तो हिरण रूपी माता पिता के साथ घूमना, उनके साथ चलना, नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। वो जानते थे कि ये सब माया मोह का आसक्ति है, पैदा हुए चलने लगे, छोड़कर भाग के आ गए, वही गंडकी नदी किनारे आ गए, वही ऋषि मुनियों के आश्रम के आजू बाजू रहते थे, वही उनका जूठा खाते थे, उनका उच्छिष्ट खाते थे, कथा कीर्तन होता तो उधर ही कान लगा के सुनते थे, क्योंकि उनकी गलती का बोध हो गया था। और इसके बाद तीसरे जन्म में फिर ब्राह्मण के घर जन्म लिए, बहुत ही उच्च कुल के ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण बन गए तो विद्या है, धन है, तो लोग आकर पूछेंगे, कुछ न कुछ जिज्ञासा करेंगे, ब्राह्मणों का मान होता है, सम्मान होता है, तो यदि मान सम्मान होगा, विद्वत्ता का प्रचार होगा, फिर मैं फंस जाऊंगा, नहीं 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 पढ़ना है। तो भगवान ने उस रूप में कृपा किया कि मत फंसो तथा कथित मान पद पूजा प्रतिष्ठा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उच्च कुल वाला हूँ, उच्च जाति वाला हूँ, विद्वान हूँ, यह अहंकार आ सकता है। तो इसलिए भगवान ने प्रेरणा दिया कि विद्वत्ता मत दिखाओ, हाँ तुमको इस भौतिक जगत से निकलना है। तो उसमें भी वो जड़ भरत बन गए, एकदम मूर्ख बन गए। उनके पिताजी, उनके भाई जी, सब लोगों ने प्रयास किया कि वो कम से कम कुछ तो संस्कृत पढ़ लें, कुछ रट लें, लेकिन कुछ भी वो बोले ही नहीं, एकदम पागल सा आचरण, पागल सा व्यवहार। क्यों? क्योंकि भगवान उनको बचाना चाहते थे, भगवान उनको संसार से लेके जाना था, इसलिए भगवान की प्रेरणा से ही ये सब योजना बनी। और अंतोगत्वा हम आगे पढ़ते हैं किस प्रकार राजा को रघुगण का उद्धार करने के बाद फिर भरत जी अपने आप को मुक्त करते हैं इस भौतिक संसार से। तो इस प्रकार भगवान की बहुत सारी योजनाएं बन सकती हैं भक्ति जीवन में। सामान्य अवस्था में कभी कभी देखा जाता है कि हम भक्ति करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी एक जगह और लिखते हैं पहले स्कंद में, जहां नारद जी भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं व्यास देव जी से, तो नारद जी कहते हैं, नवे जनो जातु कथंचना ब्रजे मुकुंद सेव्यन्न वदंग संस्कृतिम स्मरण मुकुंदान घ्रु पगुहनम पुनः विहार तो मृक्षेन रसग्रहो जनः। तो नारद जी कह रहे हैं, प्रिय व्यास, नवे जनो जातु कथन चनाव्रजे मुकुंद सेव्यन अवदंग संस्कृतिम। यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, ऐसा देखा जाता है। बहुत अच्छा भक्त है लेकिन वो कभी कभी अपने पद से नीचे गिर जाता है, च्युत हो जाता है, लेकिन उसे दूसरे की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। ये नारद जी व्यासदेव को भक्ति की महिमा का उपदेश बता रहे हैं कि यदि कोई भक्त है, आध्यात्मिक जीवन में है और आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करते करते बाई चांस भौतिक प्रकृति का नियम कुछ कठोर है, यदि वो माया के आगोश में आकर गिर गया, पतित हो गया, तो भी उसको भौतिक जगत में जैसे लोग पतित होते हैं, गर्हित कर्म करते हैं, उस श्रेणी में उस भक्त को नहीं रखना चाहिए। जैसे भौतिक जगत में भी कोई चार नियम तोड़ रहा है और एक भक्त था, भक्ति करता था, अचानक अपने पद से गिर गया और वो नियम तोड़ने लगा, तो भौतिक जगत में ऑलरेडी सब लोग तोड़ रहे हैं, और एक भक्त था, भक्ति जीवन से गिरने के बाद भी तोड़ने लगा, तो भी नारद जी बता रहे हैं कि दोनों के एक स्टेज में मत रखना, उसी दृष्टिकोण से मत देखना जिस दृष्टिकोण से आप उस भौतिक व्यक्ति को देख रहे हो, भौतिक जगत के व्यक्ति को देख रहे हो, क्योंकि भक्त के जीवन में जो परिस्थिति आई है जरूर उसके लिए भगवान की कुछ योजना है। कैसे समझ सकते हैं इस बात को? मान लीजिए दो बालक हैं और दोनों बीमार हैं, अर्थात इस भौतिक जगत में सब लोग बीमार हैं। उसी समय प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमने ये मंदिर नहीं बनाया, हमने मेंटल हॉस्पिटल बनाया, अरे क्योंकि सब लोग बीमार हैं। तो दो बालक बीमार हैं, एक बालक है जो लावारिस है, अनाथ है, उसका कोई संरक्षक नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, और एक बालक है जो अपने पिता के संरक्षण में बीमार है, उसके पिताजी के रक्षण में है, वो संरक्षण में है, पिताजी टेक केयर करने वाले हैं। तो जो बालक अनाथ है, जिसका रक्षक कोई नहीं है, उसका जीवन कैसा है? आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिसका कोई रक्षक नहीं, कोई देखने वाला नहीं और वो बीमार है, तो उसका जीवन कैसा रहेगा? पूरा दुख से भरा रहेगा, क्योंकि कोई देखने वाला ही नहीं है, उसका इलाज कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बालक है जो बीमार है और एक वात्सल्य पिता, एक शुभचिंतक पिता के संरक्षण में है, तो पिता पूरा प्रयास करेंगे कि बालक का बीमारी ठीक हो जाए, पिताजी पूरा प्रयास करेंगे कि बालक की बीमारी ठीक हो जाए। तो भक्त का भौतिक जगत में पतित होना और सांसारिक लोगों का पतित होकर कर्म करना कुछ ऐसा ही है। संसार में जो लोग पाप कर्म कर रहे हैं और एक भक्त किसी कारणवश यदि पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है, तो दोनों में बहुत अंतर है। ऐसा अंतर है जैसे अनाथ बालक और एक वात्सल्य पिता के संरक्षण में बालक बीमार रहता है, क्योंकि जो बाहर के जगत में पाप कर रहे हैं उनको कुछ मालूम नहीं है, और भक्ति व्यक्ति कुछ किया नहीं, गुरु का आश्रय लिया नहीं, तो उसका जीवन बहुत ही दुखमय रहने वाला है, क्योंकि अपने पाप पूर्ण कर्मों के कारण अभी भी वो दुख भोगेगा और मरने के बाद भी उसका लोक बिगड़ने वाला है, उसका दुख से निवृत्ति नहीं होने वाला है, उसका भव सागर भव रोग नहीं मिटने वाला है, बहुत ही जघन्य नरक में जाना पड़ सकता है उसको। लेकिन यदि किसी कारणवश भक्त से पाप हो गया, तो वो एक ऐसे पिता के संरक्षण में रह चुका है जिनका हृदय बहुत विशाल है, जिनका हृदय बहुत बड़ा है, और ऐसे पिता अपने उस बालक को भी नहीं छोड़ते हैं। हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष एग्जाम्पल अजामिल के जीवन में, उसने क्या पाप नहीं किया भगवान की भक्ति करने के बाद, गिरने के बाद सब कुछ पाप किया, माता पिता को निकाल दिया, अपनी पत्नी को निकाल दिया, वेश्या को घर पे लेकर आया, उससे पुत्र उत्पन्न किया, चोरी करता था, वेश्या को पसंद करने के लिए डकैती करता था, क्या क्या कर्म करता था, लेकिन फिर भी चूंकि पिता का हृदय होता है, भगवान हमारे माता पिता हैं, भगवान हमारे शुभचिंतक हैं, भगवान हमारे हितैषी हैं, तो भगवान उस सीमा तक जाकर भी योजना बना सकते हैं कि कैसे उसको पुनः वापस लेके आना है। तो ठीक वैसे ही है। इस प्रकार एक भक्त के जीवन में जो कुछ होता है और एक सांसारिक जीवन में जो व्यक्ति पाप करता है, दोनों को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और इसीलिए शास्त्र हमको बार बार आगाह करते हैं कि जिन भक्तों ने अपना जीवन समर्पित किया है भगवान के चरणों में, उनका किसी भी स्थिति में निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति निंदा का पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का नियम कुछ अलग है। भगवान बोलते हैं कि वो पतित नहीं है, वो मेरा ही भक्त है। और भगवान और गुरु, वो दोनों लोगों का काम है उसके जीवन का देखरेख करना। यदि कोई सामान्य भक्त उसमें अपना दिमाग लगाकर उलझता है किसी भक्त के बुरे कर्मों का चर्चा करना, प्रचार करना, तो उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए घाटा हो सकता है। क्योंकि भगवान की योजना उस भक्त के लिए कुछ निर्धारित है, भगवान कर देंगे, लेकिन आपने जो अपराध किया उसके लिए शायद भगवान आपको माफ नहीं करेंगे। इसलिए शास्त्र बार बार आगाह करते हैं कि किसी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। यही दृष्टिकोण है, यही दृष्टिकोण है। और दो बात यहां इस श्लोक में लिखते हैं कि यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि भगवान की कुछ योजना है। तो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे कि देखो, जैसे मान लीजिए आज हमने रसगुल्ला खाया या बहुत अच्छा छप्पन भोग खाया आज, तो रसगुल्ला या छप्पन भोग खाया और इसके बाद हमको रसगुल्ला या छप्पन भोग नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिलने के बावजूद भी जो उसका टेस्ट है, जो उसका रसास्वादन है, जो उसका रस है, वो भी हमारे अंदर चला गया क्या? वो रस नहीं गया है, वो रस है अंदर। वो पांच महीना बाद भी वो रस याद आएगा रसगुल्ला देखेंगे तो, एक साल बाद भी रसगुल्ला का टेस्ट याद रहेगा, वो भूलेगा नहीं, अरे बहुत टेस्टी हो रहा है इस दुकान पर, ये बहुत अच्छा मिलता है, कभी कभी गुजरते हैं तो बहुत सुंदर मिलता है, खाया तो नहीं एक साल से, याद क्यों है, क्योंकि रस लेकर बैठता है। तो इसी प्रकार यहां पर बता रहे हैं नारद जी कि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का रसास्वादन, भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान के लीला में, एक प्रकार का रस है, एक प्रकार का टेस्ट है, और जिस भक्त ने अपना जीवन समर्पित करके एक बार उस टेस्ट का रसास्वादन किया है, आनंद लिया है, उसको मजा आया है भक्तों के साथ रहने का, नाचने का, खाने का, तो भले ही वो भक्त च्युत होकर भक्ति जीवन से चले जाए, लेकिन जब भी वो जीवन में भक्तों को देखेगा, हाँ मंदिर को देखेगा, कभी ऐसे ही मंदिर आएगा, तो जो रस लेकर गया है वो रस भूलेगा नहीं, वो रस सबको याद आएगा, बार बार याद आएगा। इस प्रकार इस रूप में भी भगवान भक्त को कभी अपना विस्मरण नहीं होने देते हैं। वो भले ही चला जाए, लेकिन जो टेस्ट है, जो रस है, जो नाचा है, गाया है, जैसे मान लीजिए कोई भक्त छोड़ के चला गया, ब्रह्मचारी को छोड़ के चला गया, कुछ दिन बाद चला गया, लेकिन जब भी वो कहीं भक्त को देखेगा, ब्रह्मचारी को देखेगा, कहीं मायापुर घूमने आया, वृंदावन घूमने आया, या मंदिर में गया, तो अपना जीवन याद करेगा, अरे कैसा था। तो जब तक याद करेगा तब तक वो भगवान से जुड़ा हुआ है, राधा राजबरे से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार वो भक्त ने विस्मरण किया ही नहीं। जैसे अजामिल पाप में जुड़ा हुआ था, लेकिन नारायण का स्मरण नहीं कर पाया, विस्मरण नहीं कर पाया, नारायण 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 चलते ही था, और भगवान ने उस रूप में उसको ले लिया, अपने पुत्र का नाम बुलाया और भगवान ने उसको बचा लिया। और यहाँ भक्त तो चला जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में एक प्रकार का रस है, एक प्रकार का आस्वादन है, और भक्त तो टेस्ट, उस रस को टेस्ट करके गया है। तो बहुत ही आसान नहीं है उस टेस्ट को भूलना, उस रस को भूलना। भक्ति में एक आनंद है, उतना आसानी से कोई भूलता नहीं है। तो वो संसार में भी रहता है, लेकिन उस रस को साथ में लेकर चलता है, याद करते रहता है, और उस याद करने के कारण, उस चिंतन के कारण भगवान उसको, भगवान ने उसके लिए कुछ योजना बना के रखी होगी, बचाया होगा। तो ऐसे बहुत ही सारे एग्जाम्पल है शास्त्रों में। एक ऐसी लौकिक कथा आती है कि दो भक्त थे, कोल्ह जी और अल्ह जी, कोल्ह और अल्ह दोनों भाई थे, सगे भाई थे। कोल्ह और अल, दो भाई थे कोल्ह और अल, बाहर की जगत में कथा प्रचलित है खासकर इस टॉपिक के लिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो दो भाई थे जो कि सिद्धांत अच्छा बैठता है, कोल्ह और अल्ह जी दो भाई थे। कोल्ह जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान की स्तुति करना, भगवान की पूजा में नियोजित रहना, अपने शरीर का, अपने हाथ का, अपने पैरों का, लाइक पूरा साणा गति था भगवान की सेवा में और उसी में संतुष्ट रहते थे, और कोई काम नहीं था। जो छोटा भाई था अल्लाह जी, अल्लाह जी का भोग विलास में बहुत इंटरेस्ट था, राजाओं की स्तुति करना, भगवान की स्तुति नहीं करते, राजाओं की स्तुति करना, भोग विलास की बातें करना और भोग विलास में लिप्त रहना, उसमें उनको आनंद आता था। लेकिन एक अच्छा गुण था कि वो अपने भाई की बात सुनते थे, बस एक ही अच्छा गुण था, सुनते थे, बस भक्ति जनक बाकी नहीं सुनते थे लेकिन सम्मान करते थे अपने बड़े भाई का, वो बहुत सम्मान करते थे, बहुत आदर था उनके मन में, आदर था कि हमारा भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, भले मैं ना लायक हूं वो अच्छा काम कर रहा है, और वो संतुष्ट रहते थे, अल्लाह जी भी संतुष्ट रहते थे। लेकिन कोल्ह जी सदैव चिंतित रहते थे कि हमारे भाई का क्या होगा, यदि ऐसे ही जीवन जिया तो क्या होगा। तो भाई को एक दिन बुलाया और बोले कि देखो ये संसार की जो चीजें हैं नश्वर है, संसार के भोग विलास की वस्तुएं सब नश्वर हैं, ये कोई सुख सुविधा नहीं देने वाली हैं, और विरक्ति में आनंद है, ये भोग विलास में आनंद नहीं है, चलो चलते हैं एक बार आपको हम द्वारका घुमा के लाते हैं चलो। चूंकि भाई की आज्ञा का पालन करते थे, द्वारकाधीश में इंटरेस्ट नहीं था लेकिन घूमने जाना है, चल देते हैं सब लोग, चले गए घूमने के लिए। द्वारका चले गए और द्वारका पहुंचने के बाद कोल्ह जी गए द्वारकाधीश के सामने और बहुत ही सुंदर श्लोक गाया, छंदों की रचना की, कविता गाया, घंटों तक स्तुतियां किया, क्योंकि बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त थे। और इसके बाद अपनी स्तुति पूजा खत्म हुई और कोल्ह जी अपना बिल्डिंग और वो सब देख रहे थे, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था द्वारकाधीश में। फिर कोल्ह जी ने अल्लाह जी को बुला और बोले कि ठीक है आप भी कुछ गाओ भगवान के लिए। बोले कि मैं क्या गाऊंगा, मैं तो राजाओं की स्तुति करता हूँ, विषय भोग वाला हूँ, मुझे कहाँ आता है कुछ भी। बोले नहीं, भगवान के सामने खड़े हो और कुछ स्तुति करो, जो सुना है हमसे सुना है वही सुना हुआ चीज कुछ तो रिपीट करो तुम भगवान के लिए, कुछ तो गाओ। वो नहीं गा रहे थे लेकिन कोल्ह जी ने बार बार कहा, और चूंकि आज्ञाकारी भाई थे तो उनके कहने पर उन्होंने माधुर्य भाव का, श्रृंगार भाव का कुछ एक दो ऐसे गीत गुनगुनाया, क्योंकि सुनते थे अपने बड़े भाई गाते रहते थे, सुन सुन उनके याद हो गया था। तो द्वारकाधीश के सामने खड़ा होकर गाए, और जब वो गाए तो गाने के बाद क्या हुआ, द्वारकाधीश ने पुजारी को बुलाया और अपनी प्रसादी माला दी और बोले कि जाके अल्लाह जी को पहना दो। पुजारी आया और अल्लाह जी स्तुति करके खड़े थे, कोल्ह जी भी खड़े थे, और पुजारी आया और अल्लाह जी को माला देने लगा। बोले ये क्या कर रहे हो, हमारे बड़े भैया इधर हैं, इनको पहनाओ। बोले नहीं नहीं, द्वारकाधीश ने मुझे प्रेरणा दिया, अंतर अंतर से आवाज आई कि ये जो माला है ये आपके लिए है। बोले कि अल्लाह जी के गले में डाल दो। बोले अल्लाह जी के गले में डाल दो, लेकिन ऐसा कैसे। बोले मैं नहीं जानता, उनका आदेश है, मुझे पालन करना पड़ेगा। और ऐसा बात करते ही अल्लाह जी गले में डाल दिया। कोल्ह जी से रहा नहीं गया कि ऐसा कैसे हो गया, मैं आपका इतना अच्छा भजन करता हूँ, पूरा जीवन समर्पित है मेरा, आप कितनी सी स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ, और ये पूरा भोग विलास में रहता है, कभी भजन नहीं करता है, मंगला आरती नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, और आपने उसको अपनी प्रसादी माला दे दी, एक श्लोक क्या गा दिया आपके लिए, और आप इतने खुश हो गए, और मैं इतना जीवन से आपका कीर्तन कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, और आपने हमको अपना माला नहीं दिया, अपना उच्छिष्ट नहीं दिया। और उनको बहुत ही संताप हुआ, और मानो अहंकार भी आ गया, दैववश भगवान की प्रेरणा के कारण ही ऐसा हुआ उनके अंदर, और बहुत ही क्षुब्ध हो गए। और उनको लगा कि कलयुग में सब कुछ बदल गया है, भगवान का नियम कानून भी बदल गया है। ऐसे संसार वाले बोलते हैं कि देखो पापी जितना पाप करते हैं कितना आनंद से रहते हैं, और जो भजन करते हैं कितना तकलीफ में रहते हैं, कितना दुख में रहते हैं। तो मानो कोल्ह जी को लगा कि शायद कलयुग में कुछ नियम बदल गया है, भगवान का भी दृष्टिकोण बदल गया है, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, पूरा जीवन मेरा भगवान के भजन मिल गया और एक दिन माला चंदन नहीं मिला, और मेरा भाई इतना विषय भोग विलास में रहने वाला भाई, और उसको बोलने जाकर माला पहना दो, तो ये गड़बड़ है। और इतना ग्लानी हुआ कि वो बाहर निकले और समुद्र में छलांग लगा दिए, कूद गए कि भजन करना बेकार है, मर जाना अच्छा है, संसार में जाके क्या करूंगा, संसार में रह नहीं पाऊंगा और भजन का कुछ फल मिल नहीं रहा है, तो समुद्र में कूद गए। और समुद्र में कूद गए तो जैसा कि अभी साइंटिस्टों ने भी माना है कि समुद्र के अंदर भी द्वारका है, राइट। तो जब कूदे तो वो द्वारका पहुंच गए, जो नीचे वाला द्वारका है वहां पहुंच गए। अब वहां पहुंच गए तो फिर भगवान के जो पार्षद लोग थे उनका स्वागत किए, तैयारी हुआ, फिर भगवान से मिले, भगवान ने गले लगाया, भगवान ने उन दोनों लोग मिले और इसके बाद मेरे को बोला चले बहुत दिन हो गया आपको, भूखे हैं चलो खाते हैं। तो भगवान के साथ वो खाने बैठे, जब भगवान के साथ खाने बैठे तो वहां भगवान ने दो प्लेट लगवाई। तो कोलो जी ने कहा कि ये दो प्लेट किसके लिए, मैं तो अकेला हूँ। बोले नहीं, एक आपके भाई के लिए। कोलो जी बोले यहाँ भी ये ये क्या है, आपके अंदर कुछ नियम कानून है कि नहीं? तो बोले क्या हुआ, बहुत नाराज थे वो भगवान से, भगवान से मिलने वाले सब कुछ भूल गए थे, लेकिन जब प्लेट देखा तो फिर उनको गुस्सा आ गया, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, आप ऊपर भी ऐसा कि नीचे भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नियम क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि देखो मैं आपको, मैं वही कर रहा हूं जो उचित है, क्योंकि मेरे राज्य में कोई अनुचित कार्य नहीं होता है। बोले कैसे उचित है, आपने ऊपर इतना पक्षपात किया, इतना गलत निर्णय आपने सुनाया, पुजारी बोला कि भगवान ने प्रेरणा दी, आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान ने कहा कि मैं उसके पूर्व जन्म का इतिहास बताता हूँ, आप इस जन्म के विरक्त हो, भजन करने वाले हो, और मेरे पूर्व जन्म का विरक्त और भजन करने वाला हो। वो पूर्व जन्म में राजा का लड़का था, इकलौता राजकुमार था, लेकिन राजकुमार होते हुए भी संसार के प्रति उसके जीवन में वैराग्य आ गया, और राज छोड़ा, भगवान जंगल में चला गया और भगवान का भजन करने लगा। बहुत ही विरक्ति पुरुष ने भजन किया था, बहुत ही निष्ठा से भजन किया था, सब कुछ त्याग दिया था, सब अश्वर और राज भोग विलास सब कुछ त्याग दिया था और भगवान का भजन करता था। भजन करते करते 50-60 वर्ष का उम्र बीत गया था। अचानक एक दिन उसी देश का राजा, क्योंकि वो राजकुमार तो हट गया था, कौन राजा बना पता नहीं, तो जो राजा बना अपने मंत्रियों और रानियों और धन संपदा ऐश्वर्य के साथ वो जंगल में भ्रमण करने के लिए आया, और जहां उसकी कुटिया थी भजन करने का, उसके कुछ दूरी पर ही उसका डेरा तंबू लग गया, और राजा कुछ दिन तक वहां रहा, भोग विलास किया, और जब वो भोग विलास देखा तो देखने के कारण उसके मन के अंदर इच्छा हो गई कि अरे ऐसे जीवन बीत गया, यदि मैं भी राजकुमार था, यदि मैं नहीं होता तो आज मैं भी ऐसा होता, आज मैं भी आनंद लेता, इस प्रकार का आनंद लेता। उसके अंदर ऐसी इच्छा आ गई, क्योंकि विषयों के संग करने से, विषयों के नजदीक रहने से इच्छा जागृत हो जाती है। वो भजन अच्छा कर रहा था, लेकिन राजा का टेंट तंबू बगल में लगा, तो उसके अंदर इच्छा आ गई देख के कि अरे मैं तो राजकुमार था, यदि मैं ये भजन नहीं करता, साधु नहीं बनता, तो आज मैं भी ऐसे होता। और इस प्रकार ऐसी इच्छा करते रहो, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र हो चुका था, इसलिए समस्त इच्छाओं को उसने मार दिया, खत्म कर दिया। लेकिन सूक्ष्म रूप में वो इच्छा दबी थी उसके अंदर कि अरे कितना अच्छा जीवन है, मैं भी ऐसा भोग कर सकता था, आनंद ले सकता था। और ऐसे ही विचार में, सूक्ष्म विचार में उसकी मृत्यु हो गई। तो देखा मेरा भक्त है, सूक्ष्म विचार था, मेरा भक्त यदि कुछ इच्छा करता है तो मैं उसको पूरा कर देता हूँ। चूंकि उसने अच्छी भक्ति की थी, इच्छा थी, और इच्छा लेकर मरा था, इसलिए इस जीवन में मैंने उसको भोग विलास और ये सब कुछ दे दिया, राजाओं का संगति दे दिया, धन दे दिया, संपत्ति दे दिया, उसी में डूबा हुआ है, क्योंकि उसको आनंद लेना था। लेकिन मालूम है, इतना देने के बावजूद भी मैंने उसको आपका छोटा भाई बना के रखा है। क्यों बना के रखा है, क्यों? क्योंकि वो भी देना है, उसको बचाना भी है, उसको बचाने के लिए मैंने उसको आपका भाई बना के रखा है। क्योंकि आपके संसर्ग में रहेगा, भले ही मेरा भक्त नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन वो आपका भक्त है, मेरे भक्त का भक्त है, मैं जानता हूं। क्योंकि मेरे भक्त का भक्त है, भक्त को पकड़ के रखा है एक दिन, इसलिए मजबूरन मुझे उसका उद्धार करना पड़ेगा, भले कितना लिप्त हो जाए, क्योंकि वो आपको पकड़ के रखा है, ये मेरी योजना से हो रहा है। इतना कोलजी सुले, बोले इसे थाई लगाया हूं, और मालूम है अभी उसका, अभी वो शुद्ध हो गया, क्योंकि आपके प्रति बहुत आस्था थी, आपके प्रति बहुत निष्ठा थी, आप पे बहुत विश्वास करता था, अभी आप नहीं है, वो बहुत दुखी है। जब से आप यहां आए तब से उसने खाना नहीं खाया है, वो आपसे विरह में है, वो रो रहा है, उसका शरीर सूख गया है, जाकर देखो, उसको बुला कर लाओ और यहाँ खाना खिलाओ। फिर कोलजी ऊपर आते हैं और मिलते हैं, तो वास्तव में अलजी का ऐसा ही दशा था, अपने भाई के वियोग में सब कुछ भूल गए थे, समस्त सुख, समस्त राशि ऐश्वर्य, समस्त भोग विलास, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, और इस प्रकार वो शुद्ध हो गए। फिर भगवान ने दोनों लोगों का उद्धार किया, भगवान ने दिया भी लेकिन योजना भी बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति जीवन में कुछ दिख सकता है, लेकिन भगवान के उसके पीछे कुछ न कुछ योजना रहती है, भगवान कभी भी उस भक्त को छोड़ेंगे नहीं जिसने भगवान का आश्रय लिया है, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रभुपाद जी भी इस तात्पर्य बहुत अच्छा लिखते हैं, यदि कोई भक्त नीचे गिर जाता है तो नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। अपने कर्मों का सुख दुख भोगता है लेकिन भगवान के द्वारा प्रताड़ित होने पर वो सुधर जाता है। भगवान कुछ न कुछ जीवन में ऐसा मोड़ लाते हैं कि उसकी शरणागति दोबारा वैसी आ जाती है। जैसे अजामिल प्रताड़ित हुआ, यमदूत आए, यमदूतों का दर्शन किया, भय में आ गया, इसके बजाय भजन किया हरिद्वार और मुक्त हो गया। गजेंद्र भक्त था, बहुत संकट आया, बहुत विपत्ति आया, बहुत कष्ट उठाया, भगवान ने अंतिम समय स्मरण दिलाया और उठा लिए। उसी प्रकार भगवान कष्ट दे सकते हैं, कठिनाई दे सकते हैं, लेकिन कठिनाई और कष्ट देने के बावजूद भी भगवान का कुछ न कुछ योजना उस भक्त के प्रति रहता है, यह विश्वास रखना चाहिए। यही विश्वास है, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भवति। भगवान बोलते हैं कि मैं महान भय से रक्षा करूंगा करूंगा। तो ये मुख्य रूप से इस श्लोक में यही बात बताई गई है। और कंक्लूजन प्रभुपाद जी करते हैं कि काम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार धीर तीव्रेण भक्ति योगे न जयतः परसम पुरुम। इस प्रकार यदि आपके अंदर कोई कामना है या कामना नहीं है, आपको मुक्ति चाहिए, आपको भगवान चाहिए, आपको जीवन में कुछ भी चाहिए, तो सबसे सेफ जो रास्ता है, सबसे सेफ जो आश्रय है वो है भगवान की शरणागति, क्योंकि यहाँ घाटा नहीं है, यहाँ घाटा नहीं है। और किसी के शरण में जाने पर घाटा है, और किसी के शरण में जाने पर घाटा है। प्राय भौतिक जगत में देखा जाता है कि यदि हम यदि कोई किसी के लिए कुछ करता है तो प्राय लोग भूल जाते हैं। मान लीजिए कोई किसी पर उपकार किया, किसी व्यक्ति ने किसी को उपकार किया तो कुछ दिन में लोग उपकार को भूल जाते हैं, या हम खुद ही भूल जाते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारा ऐसा हेल्प किया, कुछ दिन बाद इसने हमारा ऐसा सहायता किया, हम आगे वाले व्यक्ति का उपकार भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो उपकार किया वो याद रखने का और बाकी जिसने हमारे ऊपर उपकार किया उसको भूल जाने का। ये इस भौतिक जगत में चलता है, अपना स्वार्थ निकला, हरे कृष्णा, भूल जाते हैं। प्राय जगत में होता है, व्यवहार में ऐसे देखा जाता है, लेकिन भगवान के जगत में, भगवान के घर में ऐसा व्यवहार नहीं होता है। भगवान के घर में यह है कि एक बार जिसने भगवान के लिए कुछ किया भगवान उसको फिक्स रखते हैं, भगवान उसको देंगे देंगे। और परम पूज्य राधा गुण गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि भगवान का हृदय बहुत विशाल है, संसार में यदि आप किसी के लिए पहाड़ की तरह करेंगे तो संसार वाले उसको सरसों के दाने के समान महत्व देंगे। क्या किया आपने, प्राय यही सुनने को मिलता है। बाप पूरा जीवन लगा दे बेटे को पढ़ाने में लेकिन बेटा बड़ा होगा कमाएगा तो यही बोलेगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। प्राय भौतिक जगत में ये देखा जाता है, परिवार में झगड़ा कलह होता ही रहता है कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया। दहेज प्रथा है, आप देख सकते हैं इतना कुछ बाप अपना सब माँ बाप की इच्छा होती है कि ऐसी शादी हो, ऐसा विवाह हो, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि क्या किया, क्या लेकर आई, दहेज में क्या मिला। तो ये होता रहता है संसार में, लेकिन भगवान के घर में ऐसा नहीं है। तो प्रायः भौतिक जगत का नियम है कि यदि किसी के लिए पहाड़ जैसा करेंगे तो लोग सरसों के दाने के समान मानेंगे, और भगवान के लिए यदि आप सरसों के दाने के समान करेंगे तो भगवान उसको पहाड़ जैसा बना के रखते हैं, भगवान उसको पूरा कवर करके निकालेंगे। ये भगवान के आश्रय में जाने का फल है। संसार में कोई किसी का श्रेय नहीं लेने वाला है, ना देने वाला है। तो इसलिए यदि कुछ भी जीवन में इच्छा है प्राप्त करने की, या कोई कामना नहीं है, या कुछ भी करना है, तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि भगवान के शरण में रहा जाए, उनसे रक्षा की प्रार्थना किया जाए, क्योंकि वो सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। और आज लोकनाथ गोस्वामी जिनका तिरोभाव दिवस है, तो लोकनाथ गोस्वामी जो सबसे प्रमुख, सबसे पहले गोस्वामी थे जिनको चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था, और लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही नम्र थे। उनके नम्रता का दो जगह प्रसंग आता है कि कितने विनम्र थे वो, जिसमें कि नरोत्तम दास ठाकुर को जो उन्होंने शिष्य बनाया था, तो कई बार आप लोग कथा सुन चुके हैं कि कैसे नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने शिष्य स्वीकार किया था। इतना बड़ा भगत होने के कारण भी चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार उनको वृंदावन भेजा था, जब वो बंगाल से आए और चैतन्य महाप्रभु से मिले। बहुत ही यंग अवस्था में ही लोकनाथ गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु ग्लोरिफिकेशन सुनकर घर छोड़कर मायापुर चले गए थे, और जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उनके गले लगाए, चैतन्य महाप्रभु को गले लगाया, दोनों लोग मिले, और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप चले जाओ वृंदावन, बस मिले, गले लगाए और बोले कि आप वृंदावन चले जाओ। लोकनाथ गोस्वामी आज्ञा मानने को तैयार थे, लेकिन फिर उनको पता चला कि अभी चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं 2-3 दिन में। अरे उनको तो बहुत दुख हुआ कि मैं इतना परिवार घर छोड़कर आया इनके आश्रम में, कि इनके साथ में रहूंगा, इनके साथ घूमूंगा, उनके साथ थोड़ा भक्ति भजन करूंगा, और हमको बोलना है कि वृंदावन जाओ और एक खुद संन्यास लेने वाले हैं। तो उनको बहुत तकलीफ थी, बहुत पीड़ा थी। फिर भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि नहीं, मैं लूंगा, लेकिन आप वृंदावन जाओ, मैं आपको एसोसिएट दूंगा, मैं आऊंगा वृंदावन, आप घबराओ मत। ऐसा नहीं कि संन्यास लेकर मैं कहीं जंगल में चला जाऊंगा, मैं प्रचार के लिए संन्यास ले रहा हूँ, समाज के कल्याण के लिए संन्यास ले रहा हूँ, और आप वृंदावन जाओ, मैं वृंदावन आऊंगा। लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन चले गए और वहां जाकर भजन करते थे, सबसे प्रमुख आचार्य थे। तो बता रहा सबसे नम्रता का दो सबसे प्रमुख एग्जाम्पल उनके जीवन में, कि उन्होंने जीवन में एक ही स्वीकार किया जो नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में स्वीकार किया उन्होंने, जो गुरु पूजा में नाम आता है लोकनाथ लोकेरे जीवन, यही जो गुरु प्रेयर है ये नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी के लिए गाया है, जो हम डेली स्तुति करते हैं गुरु प्रार्थना के लिए। तो ये बहुत ही महान व्यक्ति। दूसरा उनका नम्रता दिखता है कि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कि सबसे प्राचीन गोस्वामी थे, सबसे प्रमुख गोस्वामी थे, तो इनके पास गए थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट थे, सबसे क्लोज एसोसिएट थे, बहुत ज्यादा संगति लिया था चैतन्य महाप्रभु से। तो जब चैतन्य चरितामृत लिखना चाहते थे तो वो गए थे लोकनाथ गोस्वामी के पास। लोकनाथ गोस्वामी कहा ठीक है, मैं आपको चैतन्य महाप्रभु के जीवनी के विषय में बताऊंगा, उनके बायोग्राफी के विषय में बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि मेरा नाम कहीं चैतन्य चरितामृत मेंशन मत करना, कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने आपको बताया है। तो इस शर्त पे समझौता हुआ और फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन किया, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका थी लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्ग गोस्वामी का, दो गोस्वामी लोगों का भूमिका थी। तो बहुत कुछ है लोकनाथ गोस्वामी के जीवनी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, तो अभी समय पूरा हो गया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। आप लोग कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, माइक।
हरे कृष्णा, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, वेरी नाइस, थैंक यू। मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया कि जीवन में तीन चीजें हमेशा याद रखनी है, एक तो नंबर वन महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पॉइंट नंबर टू एंड पॉइंट नंबर थ्री के बारे में कोई मंत्र है, या जैसे आपने बताया चिंता और
नर्सिंग प्रेयर,
बट डू यू हैव एनी मंत्र, उसका मंत्र है समथिंग?
हाँ है ना, ये मंत्र ही है,
ये सेम
ये मंत्र है,
सेम फर्स्ट वन हैज टू बी फॉलोड फॉर सेकंड एंड थर्ड आल्सो।
सेकंड थर्ड बताया ना, चिंतामणि प्रकट सद्म सुकल्प वृक्ष लच्छावृते सुरभिर्विवालयंतम लक्ष्मी सहस्र सत्र संवर्ष विमानम गोविंदमालम। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है जो गोलोक वृंदावन का वर्णन करता है। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में है तो भौतिक जगत का जो स्वरूप है यह दुखालय अशाश्वतम है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का क्या स्वरूप है उसका वर्णन है ये। प्रभा जी बोलते हैं कि तीन श्लोक याद रखना चाहिए, रिमेम्बर करना चाहिए, और एक नमस्ते नरसिंह है जो कि भक्त लोग प्राय याद रखते ही हैं, उनको याद रहता ही है।
थैंक यू।
हरे कृष्ण, ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।